आज प्यारे बाप दादा के मिलन के साथ साथ हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए बाबा मिलन से पहले ये बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि परम आदरणीय भाई साहब हम सभी के लिए, हम सभी की झोलियां भरने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी उनका एक हाथ की ताली से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आदरणीय निर्वैर भाई साहब, आपका जन्म पंजाब में हुआ। इंडियन नेवी में 9 वर्ष तक आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के पद पर अपनी सेवाएं दी। आप सत्य की तलाश में 1959 में पहली बार ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। उस समय आप इंडियन नेवी में थे। आपका व्यक्तिगत संपर्क यज्ञ पिता, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, यज्ञ माता मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती एवं अन्य भाई और दादियों से जब आपका संपर्क हुआ, उनको देखकर आप बहुत प्रभावित हुए। 1963 में आपने अपना संपूर्ण जीवन यज्ञ पिता श्री ब्रह्मा बाबा के मार्गदर्शन में ब्रह्मा कुमारीज में तन मन धन से संपूर्ण समर्पित कर दिया। आप वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी के बनाने में आपकी बहुत रुचि रही है। 1982 में आपने ब्रह्मा कुमारीज को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया। आप वहां पर सेक्रेटरी जनरल व अन्य सदस्यों से मिले। आपने विश्व के लगभग सभी देशों में भ्रमण करके ज्ञान पिपासी आत्माओं को पिता परमात्मा से मिलन करवाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। आदरणीय भाई साहब, वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड हेडक्वार्टर के सेक्रेटरी जनरल पद पर आसीन हैं एवं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ऐसी महान विभूति आदरणीय भाई साहब हम सभी के बीच में हैं। आपको देखकर लगता है जब हम सभी बहनें भट्टी में आते हैं और भाई बहने सभी मिलते हैं, सच कहती हूँ भाई साहब, आपको देखकर लगता है संसार में रहते हुए संसार से उपराम हैं आप। गुण रत्नों से सजी हुई तपस्वी मूर्त हैं आप। बाप समान निरंकारी विश्व वंदनीय हैं आप। ब्रह्मा बाप के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं आप। हम सभी को ज्ञान रत्नों से हर पर भरपूर करने वाले हैं आप। ऐसे आदरणीय भाई साहब का स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। आपकी क्लास का आज विषय है निर्विघ्न अवस्था और विजय स्थिति। हम सभी सुनेंगे आदरणीय भाई साहब से और भरपूर होंगे। ओम शांति,
ओम शांति। आप सभी बहनों और भाइयों को ज्ञात होगा, महाराष्ट्र के एक भाई ने शरीर छोड़ा है। बहुत बाबा से लगन, लेकिन जैसे उनको पहले से आभास हो, कल अपने साथ आई हुई ग्रुप को छोटी मोटी सौगातें भी बांटती उसने। आज अमृत वेले बाबा के रूम में भी मेडिटेशन की, प्रकाश स्तंभ पर भी, और प्रकाश स्तंभ पर मेडिटेशन करके अपने स्थान पर जाते हुए उनको रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, मैसिव हार्ट अटैक, और जब तक ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो अंतिम सांस ली। तो पहले 2 मिनट सभी भाई बहने खास उस आत्मा के प्रति अपने शुभ भावनाओं के प्रकंपन देने के लिए बाबा की याद में बैठे, फिर इसके बाद क्लास करेंगे।
बढ़ते जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुलवान ईश्वर से जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुलवान उच्च विचार शुभ कर्मों से उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान जग में बनता सबसे महान ईश्वर से जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान
का बाबा के मिलन की सीजन का अंतिम मिलन का दिन है। तो जैसे हरिद्वार में या इलाहाबाद में लास्ट दिन होता है कुंभ का, बहुत संख्या में भाई बहने आते हैं वहां भी, तो आज भी शांतिवन में जितनी आराम से रहने की जगह है उससे 4-5 हजार ज्यादा ही आए हैं। तो बहुत मुबारक का दिन है सभी के लिए, बजाइए ताली अपने लिए बजाइए। क्योंकि सारा साल बहनें सेवा करती हैं, भाई भी सेवा करते हैं, तो संख्या बढ़ना ईश्वरी परिवार में ये सेवा की सफलता की निशानी है। और आज तो फिर देखिए बाबा से मिलन का दिन है, जिस उमंग से आप सब बहनें भाई आए हैं अवश्य ही जब से आप यहां पधारे अलौकिक अनुभव की गहराई में जा रहे होंगे, कुछ नए नए विचार भी आ रहे होंगे, और थोड़े दिन के बाद फिर यहां पर ईश्वरी सेवा के लिए मुख्य भाई बहनों की मीटिंग भी होने वाली है। सभी जोन के भाई बहने उसमें होंगे, उसके लिए भी काफी विचार सबके चलते हैं, क्योंकि हर एक के मन में एक ही बात रहती है कि बाबा ने जो कहा है, एक तो स्वयं पर पूरा ध्यान देना है, अपनी स्थिति को इतना सुंदर बनाना है, इतना श्रेष्ठ बनाना है, जो आप पसंद भी हो, बाप पसंद भी हो, ईश्वरी परिवार के पसंद भी हो, जिसको हम लोक पसंद कहते हैं। लौकिक दुनिया की बात करेंगे तो वहां तो भिन्नता रहेगी, कोई पसंद करेंगे कोई नहीं करेंगे, लेकिन जब हम कहते लोक पसंद तो ईश्वरी परिवार के हिसाब से लोक पसंद होना जरूरी है। और उसका आधार एक ही है कि जब से बाबा के बने हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा को पहचाना है, स्वीकार किया है कि बाबा स्वयं इस समय इस धरा पर अवतरित होकर के हम सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से मालामाल कर रहे हैं, दिव्य गुणों से हमें सजा रहे हैं और योग की शक्ति से हमारा जन्म जन्मांतर का कोई हिसाब है उसको भी चुकतू करा रहे हैं। ईश्वरी सेवा के द्वारा हमारा भविष्य का भाग्य बना रहे हैं। चारों ही सब्जेक्ट बुद्धि में रहते हैं और चलते चलते एक चीज देखी है कि जब हम अपनी ये ईश्वरी यात्रा शुरू करते हैं एक नया ज्ञान मिलता है, नई समझ मिलती है और उस नए ज्ञान नई समझ के आधार से नया अलौकिक जन्म होता है। और नए अलौकिक जन्म की बहुत बहुत उमंग रहती है, उछल मारते हैं। ज्ञान को अच्छी तरह समझने का अथक पुरुषार्थ करते हैं और हर एक एक्टिविटी में बहुत एक्यूरेट पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि बुद्धि में रहता है हम इतना देरी से बाबा के पास आए हैं, जबकि बाबा को इस धरा पर आए हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन हमने अभी पहचाना है, थोड़े टाइम से पहचाना है, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी अपना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। लेकिन आप जानते हैं पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है और पुरुषार्थ में आगे बढ़ना उसका एग्जामिनेशन भी होता है, टेस्ट पेपर भी आते हैं। बिना टेस्ट पेपर के आप आगे बढ़ रहे हैं पता कैसे चलेगा? तो टेस्ट पेपर किस रूप में आते हैं? कुछ मोटे रूप शुरू में, वो तो सभी को पता लगता है, हरेक के जीवन में एक विशेषता का संस्कार होता है जो जन्म से लेकर के बहुत सहयोग देता है। उसके साथ साथ देखा गया है कि एक कमजोरी कोई ना कोई जीवन में जरूर होती है और वो कमजोरी समय प्रति समय ईश्वरी मार्ग में विघ्न डालती है। बाबा की मुरलियों के अंदर, साकार मुरलियों के अंदर बहुत सरल रीति से बाबा ने कुछ बातों को वर्णन किया हुआ है। कभी किसी, जबकि कभी संकल्प में भी नहीं होगा, लेकिन कोई अच्छी चीज देखी लोभ आ जाएगा, कभी सुस्ती आ जाएगी और कभी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो गुस्सा भी आ जाएगा, ये भी देखा गया है। और भी बहुत सारी कमियां ऐसे सामने आती हैं। और जो भी कोई अपने अंदर कमी होती है उसके हम अच्छी तरह से जानकार होते हैं। दूसरे तो हमें बाहर से देख करके ही कह सकेंगे, ध्यान भी खिंचवाएंगे, हिम्मत नहीं होती है कि उसको स्वीकार करें, नाना कर देंगे। लेकिन जब बिस्तर पे रात को आराम करने जाते हैं तो सारी बातें सामने आने लगती हैं, ख्याल में आने लगता है सारे दिन में क्या क्या आज कमजोरी रही, कमी रही, कभी अहंकार के वश, कभी क्रोध के वश, कभी लोभ के वश, कभी मोह के वश, कुछ ना कुछ समझ में आता है कि माया मासी अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। कहीं ना कहीं ठोकर लगती है। और आप देखेंगे जब ठोकर लगती है तो अपना मन खाता है, मन उदास हो जाता है, चेहरे पे रौनक नहीं रहती है। तो ये सब निशानियां हैं विघ्नों की, क्योंकि आज की जो क्लास की टॉपिक दी हुई है कि निर्विघ्न अवस्था, और उसके साथ में फिर निर्विघ्न अवस्था हो और फिर विजयी स्थिति बने, दो बातें हैं। तो विघ्नों से पार जाने के लिए खास किन बातों का हमें आवश्यकता रहती है? तो एक तो अच्छी तरह से ज्ञानी तो आत्मा बनना जरूरी है। हर कर्म का आद मध्य अंत सोच करके कर्म करना जरूरी है। उसका ध्यान नहीं रहता, अचानक से कोई बात सामने आई और रॉन्ग डिसीजन हो गया तो क्या होता है? गाड़ी चलाने वाले सब समझते हैं इस बात को, रॉन्ग डिसीजन होना, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? एक्सीडेंट। सड़क पर आप देखेंगे आते जाते बहुत एक्सीडेंट होते हैं, किसी ना किसी का तो उसमें कारण तो होता है। तो जीवन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं और उनसे अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि निर्विघ्न बनने के लिए पहले तो विघ्नों के कारण नुकसान कितना हो रहा है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए। मेरा कितना अमूल्य समय उसमें वेस्ट हो रहा है, एक एक सेकंड की बाबा ने जो वैल्यू बताई है वो व्यर्थ चली जाती है। सेकंड तो क्या, घंटे घंटे तो क्या, दिनों दिन तक इतना समय ले लेते हैं विघ्न, और विघ्नों का मूल आधार कहो, मूल कारण कहो, आप देखेंगे अपनी ही कोई ना कोई कमजोरी होती है। कहीं किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ ही मान लो, किसी बच्चे के साथ उसकी आदत अच्छी नहीं है, पर उसके प्रति इतनी भावना है, इतना प्यार है, उसको प्यार को मैं कहूंगा, इतनी अटैचमेंट है, मोह है उसमें, वो गलत भी काम करेगा तो भी उसमें कुछ नहीं उनको इशारा देंगे, और बाद में उसकी रिजल्ट जो मिलती है नुकसान कारक हो जाती है, धन का भी नुकसान होता है और समय का भी नुकसान होता है, और साथ साथ अपना जो अंदर का सुख है उसका भी नुकसान होता है, शरीर का जो आराम होता है वो भी नहीं मिलता है, फिर तो उसका असर आकर के हेल्थ के ऊपर होता है। तो ये एक से एक लिंक जुड़ी हुई है बातों की, इसलिए शुरू शुरू में जब हमने ज्ञान लिया तो सुनते थे, कोई कोई ज्ञानी तो आत्मय मस्त फकीर थे, मस्त फकीर हैं इस दुनिया के अंदर लेकिन ईश्वरी मस्ती में रहते थे, बिल्कुल सिंपल लाइफ। ऐसे मस्त फकीर जो हैं वो सहज रीति विघ्नों से पार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो आद में ज्ञान जब लिया, आद में जिस तरह का उमंग था, जिस तरह की भावना थी, जिस तरह का पुरुषार्थ था, उसको कंटिन्यू करना जरूरी है। ये सोचना कि मैं तो बहुत पुराना हो गया, बहुत पुरानी हो गई, कब से बाबा का ज्ञान लिया है मैंने, वो लेने के बाद अगर मेरे कर्मों में स्वच्छता नहीं, श्रेष्ठता नहीं, दिव्यता नहीं, तो मुझे देखने वाले क्या कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा होते हुए भी इनका ये हाल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ अपने मन का सुख जो है वो किसमें है, जब इन कमियों के ऊपर विजयी बने तो आप सुखी रह सकें। शास्त्रों के अंदर इतनी सारी कहानियां, इतने सारे चित्र आप देखते हैं, वो वर्तमान समय ब्राह्मणों के जीवन के ऊपर आधारित हैं। अगर आप देखेंगे देवताएं नहीं बैठ करके उनके सांप की वो सैया बनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन इस समय की बात। तो विघ्नों को पहले परखना जरूरी है और उसके लिए परखने की शक्ति बहुत चाहिए। कभी कभी परख शक्ति की कमी के कारण डिसीजन गलत हो जाता है, गलत डिसीजन के फलस्वरूप विघ्न और ज्यादा अच्छी तरह से नुकसान कर देता है, तन का भी नुकसान होता है, मानसिक शांति का भी नुकसान होता है, धन का भी नुकसान होता है, हर तरह से। और आपसी जो संबंध हैं, जो ईश्वरी परिवार में बहुत आपसी स्नेह होना चाहिए, उसमें भी मन मुटाव हो जाता है, उसमें भी बड़ा अजीब सा लेन देन का हिसाब रहता है। इसलिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हिम्मत रख करके बाबा जिस तरह के वायदे करवाता रहा है समय प्रति समय, हर मुरली के टाइम पर हाथ खड़ा करवाया, अभी की बात नहीं, बहुत समय से। और इस सीजन की जो मुरलियां थी उसमें तो बाबा ने कितनी कितनी बार एक एक मुरली के टाइम पर हाथ उठवाया, पांच पांच छह छह बार। उस स्मृति में रखना जरूरी है कि बाबा से जो हमने हाथ उठा के दिल ही दिल में वायदा किया है वो हमें उस पर चलना है। लेकिन वो तब चल सकेंगे जब अंदर में, दिल के अंदर क्लैरिटी हो, साफ हो कि बाबा हाथ उठवा रहा है, इसका बहुत गहरा राज है, हमें सिर्फ बांधने के लिए नहीं है, हमें बल्कि फ्री करने के लिए। अगर हम बाबा की श्रीमत पर यथार्थ रीति से कदम उठाते हैं, यथार्थ रीति से चलते हैं, यथार्थ अपना कर्म का हिसाब बनाते हैं, तो हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, निर्विघ्न बन जाते हैं। और जितना निर्विघ्न होंगे उतना मन की शांति ज्यादा रहेगी। जैसे ही विघ्न आता है आप प्रैक्टिकल देख लो, भले उसका बाद में प्रबंध तो करेंगे, लेकिन विघ्न आने से ही पहले तो मन को हिला देता है, चाहे शरीर का विघ्न आता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए योग बल जो गाया हुआ है, बाबा ने दो दिन पहले से लेके मुरली जो चली है इधर आपने सुनी होगी, बाबा की याद के बल से, बाबा की डायरेक्ट मदद से, बाबा का सकाश लेकर के, और कैसे हम पार हो सकते हैं, विघ्न के ऊपर विजयी हो सकते हैं, वो तब होगा जब अंदर में उमंग हो, पहली बात। दूसरा, बाबा के साथ सच्चाई और सफाई से, बाबा ने जो आज्ञाएं की हैं उसको सामने रखते हुए सच्चाई सफाई से अपना चार्ट देखना आता हो, वो बहुत आवश्यक है। उसको इग्नोर कर देते हैं हम, छोड़ देते हैं, फिर वापस पुराने संस्कार आ जाते हैं। पुराने संस्कार दोबारा इमर्ज ना हो, पुराने संस्कार दोबारा हमसे कोई गलत काम ना करवाएं, उसके लिए अंदर से बहुत सफाई चाहिए, सच्चाई चाहिए, और उसके साथ में योग का ऐसा अभ्यास चाहिए जो मनोबल के आधार से वो पुरानी बातों पर विजय हो जाए। नहीं तो विघ्न आते ही रहेंगे। और कभी कभी भाई बहनों से कभी सुनते हैं, मैं जब से बाबा का बना हूं मेरी बहुत परीक्षाएं हो रही हैं, लौकिक परिवार वालों से भी हो रही हैं, समाज वालों से भी हो रही हैं, मेरा बिजनेस भी ऐसा हो गया है। उसकी गहराई में जाएंगे आप, कहीं ना कहीं श्रीमत उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, श्रीमत के अनुसार 100% नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण विघ्न आते हैं। अगर आप दृढ़ संकल्प से श्रीमत पर चलें, बाबा की मदद से सब विघ्नों पर विजयी होंगे। जो बाबा कहते हैं विघ्न आएगा भी तो जैसे पानी के ऊपर लकीर आएगी, कितना टाइम रहती है, बहुत टेम्परेरी, तो ज्ञानी तो आत्मा बने, गहराई से हर बात को समझें, हर कर्म के आद मध्य अंत को समझ करके, कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो। सोच करके बोलना, सोच करके कदम उठाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, इस क्लास के अंदर ऐसे कौन बैठे हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, जरा हाथ खड़ा करें। सभी ने पहचान लिया है, वंडरफुल। अरे भगवान को पहचानने के लिए तो बहुत बहुत महीन बुद्धि चाहिए। ऐसी महीन बुद्धि आप सब की है, ये तो वंडरफुल बात है। तो ऐसे महीन बुद्धि वाले तो बुद्धिवानों के बुद्धिवान हो गए। तो बुद्धिवानों के बुद्धिवान बाबा के बच्चों को, विघ्नों को पहले से अगर दूर रखना है तो उसके लिए बाबा ने विशेष अभ्यास के लिए बोला है, अमृत वेले का अभ्यास खास, क्योंकि उस समय निर्संकल्प होके बैठ सकते हैं। कोई दुनिया की बातें नहीं है, वायुमंडल बड़ा शुद्ध है, और उसके साथ साथ एक लक्ष्य जीवन में चाहिए कि मुझे अपने जीवन में निर्विघ्न बन करके बाबा का जो कार्य है, स्थापना का कार्य है, उसमें बाबा का राइट हैंड बनना है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले अगर अच्छी तरह से आप तीसरा नेत्र खोल करके बैठेंगे तो सारे विश्व को सकाश देंगे, सारे विश्व की आत्माओं को भी वो पहुंचेगा, और उसके साथ साथ बाकी भी परिवर्तन जो चाहिए वो भी आपको महसूस होगा। इसके लिए खास अभ्यास की जरूरत है। और रोज अमृत वेले का जो मेडिटेशन है, योग है, वो पौना घंटा इस उमंग से चाहिए, बाबा आज मुझे कुछ नया अनुभव कराओ, आज मुझे कुछ नई बात करनी है। और आप देखो उसकी रिजल्ट, बाबा आपको कोई ना कोई नई बात ऐसी टच करेगा, अंदर से आएगा, बाबा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा अभ्यास करके देखिए, जितना जितना अभ्यास करते हैं अभ्यास से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई कोई भाई कोई कोई बहनों को ईश्वरी जन्म लेते ही ये वरदान मिल जाता है, वो बड़े सहज योगी हैं, आराम से उनको बाबा की याद, बाबा का फरमान, उस पर चलना बहुत इजी लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि आज टॉपिक दिया विघ्नों की, तो मोस्टली देखा गया है हरेक के सामने कभी ना कभी कोई पुराना रहा हुआ हिसाब किताब 63 जन्मों का, वो आगे आता जरूर है, पर उस पर विजयी होना बाबा का संग है। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। कड़े से कड़े पेपर में पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल देख लिया, बाप दादा साथ होते हैं, और उस समय कोई भी जो दिक्कत आनी चाहिए वो नहीं आती है, कोई रास्ता निकल आता है। तो निश्चय बुद्धि विजयंते, सुना है ना, निश्चय बुद्धि विजयंते, जिन्होंने एक बार ये निश्चय किया कि इस समय बाबा हम बच्चों को आज की मुरली अनुसार आत्माओं का कौन सा स्थान बाबा ने बताया, नैनों पर, नैनों पे बिठा के बाबा ले जाता है, इतना सरल। ऐसी स्थिति बनाने के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो अपना दिन अच्छी तरह शुरू करो, अमृत वेला कभी मिस ना करो, ये आप पक्का कर लो। दूसरा, जो बाबा ज्ञान खजाना देता है मुरली के द्वारा, उसको मिस ना करो। ये दो बातें कर लो आप अच्छी तरह से, स्टूडेंट बन करके। आप बड़े नहीं हैं, उम्र चाहे शरीर की कितनी भी है, पर हम आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो बच्चे तो सदा उत्सुक रहते हैं, उमंग में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। तो खुशी खुशी बाबा के याद का अभ्यास, खुशी खुशी बाबा के पढ़ाई का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे ये जीवन इतनी सरल लगेगी। कलयुग के अंतिम समय जब सारी दुनिया में अच्छी तरह से लोग अपनी दुनिया जो उनकी है उसमें लिप्त हैं, और लिप्त होते हुए चाहे पॉलिटिक्स में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे पढ़ाई में हैं, चाहे किसी में भी हैं, पढ़ाने में हैं, नौकरी में हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके सामने रहती है। और देखा गया जहां बाबा के बच्चे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। इतना पीसफुल रहते हैं, इतना शांति से चलते हैं, इतना आदर से चलते हैं। और किसी को तकलीफ होती है, आजकल आप जानते हैं टेंशन है, डिप्रेशन है, ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो डॉक्टर भी अभी ब्रह्मा कुमारी इसका एड्रेस दे रहे हैं। इस बात के लिए आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। फोन आते हैं, तो जिस बात के लिए अब लोग ब्रह्मा कुमारी इसको पहचान रहे हैं, इस बात में बाबा के बच्चे तो पास विद ऑनर होने चाहिए। जीवन में विघ्न ही आते रहेंगे तो बाकी बाबा का बनने का फायदा क्या हुआ। पुराना हिसाब किताब है शरीर का, वो चुकतू होता रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन विघ्नों के कारण हम उसमें फंसे ही रहे हैं सदा, ऐसी क्या जरूरत है। तो समय को पहचानते हुए बाबा कहता है अभी संगम युग का भी अंत का अंत समय है, उस समय को पहचानते हुए थोड़ा अपनी नीड्स को लिमिट में रखना जरूरी है। और बहुत क्लैरिटी से एक्शन में आना जरूरी है, और साथ साथ हमारी सहज राजयोग की जीवन है, सहज राजयोग योगी जीवन है, तो योगी जीवन हमारी इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, जो खुद को भी अंदर से आए, वाह बाबा आपने क्या से क्या दे दिया, क्या से क्या बना दिया, और हमें संपर्क में आने वाले जिनकी हम सेवा भी करते हैं उनको भी लगे कि हाँ सचमुच लाइफ हो तो इनके जैसी। तब आप देखो जो बाबा चाहता है हर एक तक संदेश जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, तो हर एक बाबा का बच्चा जैसे चेतन मैसेंजर बन करके वो कार्य करता रहे। सभी बाबा के राजा बच्चे हैं, सभी बाबा के दिल तक तनशीन हैं, सभी सत्युगी आत्माएं हैं, क्योंकि जो बाबा से सन्मुख मिलन मनाने आते हैं वो तो सत्युगी आत्माएं आ सकती हैं, दूसरे नहीं आ सकते। तो अपने भाग्य को सामने रखते हुए इस उमंग से जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप देखेंगे कि पुरुषार्थ बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, मुश्किल कुछ नहीं है, समझ की बात है सारी। और समझ क्या है? जो हम आत्माओं को हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए, संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए जो बात है वो हमारे फायदे की है, जो बात हमारे लिए विघ्न रूप बन रही है, जो रास्ता रोक रही है, जो हमें भटकाने की कोशिश कर रही है वो हमारे योग्य नहीं है, उसको डिस्कार्ड करना जरूरी है। उसको पहले से ही हाथ जोड़ देना पड़ता है कि भाई माफ कर दो, ये मेरे काम की चीज नहीं। जो जिस लाइफ में है, चाहे भाई हैं चाहे बहने हैं, परिवार में हैं, अपने अपने जॉब में हैं, अच्छी तरह दिल लगा करके सब करना है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन योग युक्त होकर के करना। जितना योग युक्त होकर के आप अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाएंगे, सेवा तो ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो इसलिए एक लक्ष्य जरूर चाहिए कि हमें बाबा ने अपना बनाया ही इसलिए है, 700 करोड़ आत्माओं में से मुझ आत्मा को बाबा ने चुना है, ऐसे ही नहीं चुना है, बाबा ने अपने दिल तख्त पर निशीन करने के लिए, बाबा ने अपने नैनों में बिठाने के लिए संगम युग पर और भविष्य में डबल ताजधारी ताज पहना करके सत्युगी राज देने के लिए अपने पास बुलाया है, तो मुझे उसकी बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए, बहुत उसका नशा होना चाहिए। जब ऐसा नशा रखेंगे तो कौन सी स्थिति बन जाएगी आपकी, कौन सी स्थिति बनेगी मन में, क्या रहेगा? आपके मस्तक पर सदा विजय का तिलक लगा रहेगा, हर समय अपने आप को विजयी रतन फील करेंगे, डरने की कोई बात नहीं होगी। आज बाबा की मुरली में डराने की कोई बात थी, याद है? तो डरने की कोई बात नहीं, इसलिए ना डरना है ना घबराना है, माया कितनी भी आए सामने कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि माया और कुछ नहीं है, माया है ही अपने कमजोरी के संकल्प, बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। तो जो अंदर से आती है उसको अच्छी तरह से पहचान करके, खुद से पहचानना इजी होता है कि मेरा कौन सा ऐसा कमजोरी का संकल्प है, और वो आप बाबा को सच्ची दिल से दे दो। बस एक बार दे दिया फिर आपका तो नहीं रहा ना, कोई भी कमी का संकल्प है तो बाबा को दे दिया फिर आपका तो रहा नहीं, अगर फिर से मन में आए तो क्या करेंगे, फिर से आ जाए तो तो फट से बाबा को सामने लाओ कि बाबा ये तो मैंने आपको दे दिया, फिर क्यों आप मेरे पास इसको भेज रहे हो? वो चला जाएगा। जैसे ही बाबा बीच में आए तो कमजोरी का संकल्प चला जाएगा। ये सिंपल, इतनी सहज सी युक्ति है, इसको ट्रायल करो, आप यूज करो। बाबा हमेशा, देखो बाबा अव्यक्त बाप दादा, इन दिनों की जो मुरलियां चल रही हैं, कितना सरलता से बाबा समझाते हैं। तो बाबा जितना ही महान हम बच्चों को बनाना चाहता है, बाबा की भावना को समझ करके उस भावना के अनुकूल अपने हर कर्म को हम अभी ध्यान रख करके करेंगे तो बाबा का नाम रोशन करेंगे। तो बाबा का नाम रोशन बच्चों के द्वारा, बाबा की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होनी है, ये आप मान करके चलो। तो कौन हो गए आप? बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के बच्चे हो गए ना। इसलिए अपने आप को खूब अच्छी तरह से खुशी में लाना जरूरी है। जितना आप अपने आप को खुशी में लाएंगे, लाइट रहेंगे, उतना विघ्नों से पार रहेंगे और विजयी बन जाएंगे, तब विजयी रत्नों की माला में पिरोए जाएंगे। लक्ष्य जितना ऊंचा रहेगा, लक्षण भी उतने ही ऊंचे जीवन में आएंगे। अगर हम लक्ष्य नहीं रखते, एक बार बहुत वर्षों पहले की बात है, हमारे कोई मित्र, कोई बड़े आदमी, तो उनको थोड़ा ज्ञान की बात सुनाई और श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया, और उनको मैंने कहा, दादा आप ऐसा नर से श्री नारायण बन सकते हो? कहते भाई, जो बात मैं कर नहीं सकता ना, मेरे को आप कहेंगे तो और ही मेरे को शांति की बजाय अशांति हो जाएगी। लेकिन नहीं, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, सच्ची दिल से जान लिया, बाबा के बन गए और अपने लक्ष्य को बड़ा क्लियर रखा है कि हमें तो बाबा जो बनाना चाहता है, राजा बच्चे बना रहा है तो हमें राजा बच्चे बनना है, हमें उससे नीचे नहीं रहना। ऐसा उमंग से जब पुरुषार्थ करते हैं तो अवश्य ही बाबा की पूरी मदद हर कदम पे मिलती है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, और बाबा हम बच्चों को अपने साथ ले जा करके कहां से कहां भेजने वाला है, याद है? बाप दादा साथ में ले जाएंगे, वतन में होते हुए परमधाम में ले जाएंगे, फिर परमधाम में कौन आएगा साथ में? हैं आने के लिए तैयार? सभी तैयार हैं परमधाम चलने के लिए? तैयार हैं, रेडी? अरे वाह, फिर परमधाम से कहां चलना है? अपनी राजधानी में चलना है, सत्युगी राजधानी में, 21 जन्म के लिए, डबल ताजदारी, 150 साल, 125 साल, इतनी लंबी आयु, कोई शारीरिक बीमारी नहीं, कोई मानसिक बीमारी नहीं, कोई रिश्तों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना आनंद से रहेंगे, तभी तो स्वर्ग कहलाएगा। वो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहां कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वो स्वर्ग पधारा, वो तो पता नहीं बेचारा कहां जन्म लेगा। लेकिन बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल में अपने मन में ये विजन सदा रखें कि हम बाबा के साथ अव्यक्त वतन में जाके परमधाम में जाएंगे। फिर शिव बाबा कहता है, फिर आप बच्चे जब सत्युग में जाएंगे, अपने खेल पाल में रहेंगे, तो मेरे आने की जरूरत नहीं है। एक बार एक बहन ने चिट्ठी लिखी बाबा को, कि बाबा सत्युग में मैं जब राज गद्दी पे बैठूं तो आप मेरे बाजू में आकर के बैठना। तो वो चिट्ठी बाबा को सुनाई अव्यक्त बाप दादा को गुलजार दादी के द्वारा। तो बाबा ने कहा उसको लिख दो कि तुम्हारा निमंत्रण बाबा को स्वीकार है, लेकिन जब तुम गद्दी पर बैठो तब निमंत्रण देना, तो बाबा जरूर आएंगे आपके पास। तो सभी बाबा के राजा बच्चे और रानियां बच्चियां, क्या कहूं मैं, प्रिंस और प्रिंसेस, सभी को अभी निमंत्रण है चलने का बाबा के पास। चलेंगे? रेडी? अच्छा, सीधे बैठ जाओ फिर। कोई भी झुटका नहीं खाएगा। अरे खुशी खुशी बैठेंगे तो झुटके का सवाल कहाँ है फिर? ऐसी खुशी की बात कि हम बाबा के साथ वतन में जाएंगे, फिर परमधाम में जाएंगे, और बाबा फिर हमें अपनी स्वीट राजधानी में भेज देंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, तब विजयी रतन कहलाएंगे। ओके, अपने लिए आज का सबसे बड़ा, वो कई बार मेरे से कहते हैं मेरे को वरदान दो, कार्ड दो, ऐसी ऐसी बातें, वहां भाई बहने कोई मिलने आते हैं तो आज का बाबा का वरदान कौन सा है? विजयी रतन। सभी बाबा के बच्चों को एक ही वरदान है कि आप सभी बाबा के विजयी रतन हो, बाबा के गले की माला के हार में पिरोए जाएंगे। सभी आराम से लेकिन सीधे बैठे और मन ही मन में यही शुभ संकल्प हम जीवात्माएं अपने बुद्धि बल से बाबा के निमंत्रण पर, बाबा के वतन की सैर करेंगे। जैसा देश वैसा भेष, सूक्ष्म वतन की सैर सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप से होगी। तो मैं फरिश्ता स्वरूप धारी सूक्ष्म वतन वासी बाप दादा के सन्मुख नयन मुलाकात कर रहा हूं। बाबा की मुस्कुराती, नैनों की रोशनी, मुझ आत्मा को अ अपने निज स्वरूप में स्थित कर रही है। बाबा के आसपास अव्यक्त वतन की लाइट, एहसास करा रही है। हम फरिश्ते कितने लाइट स्वरूप हल्के हैं, और कितने भरपूर हैं, किसके संग में है। बाबा के संग का रंग फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करा। वतन से उड़ते उड़ते अपने आदि अनादि स्वरूप में
अब फिर बजती है। सतयुग